आस्तिक अरुणिमा को लेकर गाड़ी में बैठता है और खुद गाड़ी चलाते हुए वहां से निकल जाता है। और अरुणिमा बहुत डर रही थी। उसने आस्तिक को देखा और घबराते हुए कहा, आस्तिक क्या कर रहे हो, क्या पागलपन है ये, तुम्हें पता है तुम मीरा को लगभग मारने वाले थे। मारा तो नहीं ना, शुक्र मानो कि इतने के बाद भी मैंने वहां पर किसी की जान नहीं ली, वरना इरादा तो मेरा पूरा था किसी को जान से मार देने का। पर इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो, और मैंने सबसे कहा था कि मेरे मामले में तंग ना आए। मैं तुम्हें लेकर चुपचाप वहां से चला जाता, पर वहां किसी को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। अरुणिमा उसकी बात सुनकर एकदम से दंग रह गई, पर तभी अचानक से वहां पर फायरिंग होने लगी। अरुणिमा चौंक कर पीछे देखती है और आस्तिक भी ड्राइव करते हुए देखता है। पीछे करीब करीब तीन स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही थी और तीनों की खिड़की के शीशे खुले हुए थे, जिसमें से कुछ लोगों के हाथ बाहर निकले थे और उन सब में हथियार थे। वो सब आस्तिक की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। अरुणिमा ये देखकर एकदम से चौंक जाती है और वो हैरानी से कहती है, कौन है ये लोग? फिलहाल तो इन्हें अपना दुश्मन ही समझो और सीट बेल्ट लगा लो। ऐसा कहते हुए आस्तिक ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। वो भी उन लोगों की फायरिंग का जवाब दे रहा था। उसने भी गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे खोला और पीछे कर रही गाड़ियों के ऊपर फायर करने लगा। पर तभी आगे से एक गाड़ी आती है और वो सीधे आस्तिक की गाड़ी के बोनेट को टक्कर मारकर उसकी गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह से खराब कर देती है। आस्तिक की गाड़ी संभल नहीं पाती है और सड़क से नीचे उतरकर मैदान में जाकर एकदम से एक पेड़ से टकरा जाती है। वो तीनों गाड़ियां जो पीछे थी वो आस्तिक की गाड़ी को घेर लेती हैं, और जिस गाड़ी ने आस्तिक को टक्कर मारी थी वो सामने से आकर चारों तरफ से आस्तिक को घेर लेते हैं। अरुणिमा की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं ये देखकर कि चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर लिया है। आस्तिक ने घबराते हुए अरुणिमा की तरफ देखा और उसका चेहरा हाथों में लेकर वो डरते हुए पूछ रहा है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। अरुणिमा एकदम से हैरान हो जाती है कि यहाँ पर वो दुश्मनों के बीच घिरे हुए हैं और अभी अभी उनकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया है। ऐसे में आस्तिक को सिर्फ अरुणिमा की फिक्र है, पर तभी आस्तिक के बगल वाला शीशा तेज आवाज के साथ टूट जाता है और अरुणिमा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और एक चीख के साथ उसने अपने कान पर अपने दोनों हाथ रख लिए। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अगले ही पल देव आस्तिक का कॉलर पकड़कर उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकालता है। अब तक वो सारे लोग जो दूसरी गाड़ियों में थे वो बाहर आ जाते हैं और दूसरी तरफ का दरवाजा तोड़ देते हैं। अरुणिमा डरते हुए उन्हें देख रही थी, पर जब उसने देखा कि ये देव है और ये सब देव के आदमी हैं, तो वो एकदम से घबरा जाती है। देव ने अपनी राइफल की नोक को आस्तिक के कनपट्टी पर रखा हुआ था और वो बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस वक्त गुस्से में वो कुछ भी कर देगा। अरुणिमा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और तेजी से देव के पास आते हुए उसने कहा, देव क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। पर इससे पहले कि अरुणिमा देव और आस्तिक के बीच आती, एक हाथ उसकी तरफ आता है और उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लेता है। अरुणिमा ने देखा तो सामने मीरा खड़ी थी और मीरा ने कस के पकड़ते हुए कहा, तुम्हें इसके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरुणिमा घबरा रही थी, वो मीरा के पकड़ से छूटते हुए कहती है, नहीं मीरा, देव को रोको। लेकिन मीरा अरुणिमा की कलाई पकड़कर उसे खींचकर दूसरी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए कहती है, इस वक्त देव को कोई नहीं रोक सकता है। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन देव अपनी फैमिली और अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा पोसेसिव है। कोई उसके परिवार की तरफ उंगली उठाकर नहीं देख सकता है, और यहाँ तो उस आदमी ने पूरा का पूरा हथियार उठा लिया था। लेकिन अरुणिमा ने कस के चिल्लाते हुए कहा, हाथ छोड़ो मीरा, मुझे देव को रोकना है, आस्तिक को बचाना है। देव आस्तिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता है, आस्तिक मेरा पति है, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मीरा के कदम रुक जाते हैं और वो एकदम से पलटकर अरुणिमा को देखने लगती है, लेकिन उसने अरुणिमा का हाथ नहीं छोड़ा। वो घूरकर अरुणिमा को देखती है और सख्ती से कहा, अगर वो आदमी तुम्हारा पति है फिर तो समझ लो कि वो और ज्यादा मुसीबत में है, पर फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि मेरा पति तुम्हारे पति को जान से नहीं मारेगा। और इसके बाद मीरा अरुणिमा का हाथ खींचकर उसे दूसरी गाड़ी में ले जाती है। उसने अरुणिमा को गाड़ी में बिठाया और खुद उसके साथ बैठकर वो सामने बैठे आदमी को ड्राइव करने के लिए कहती है। अरुणिमा वहां से जाना नहीं चाहती थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और देव को ऐसा ना करने के लिए कह रही थी, लेकिन मीरा लगती है दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए थे। दोनों ही अरुणिमा की बात सुन नहीं रहे थे या उसे सुनना ही नहीं चाहते थे। तो वही मैदान में आस्तिक अपनी खतरनाक निगाहों से देव को देख रहा था और देव भी अपनी लाल डेविल आंखों से आस्तिक को ही देख रहा था। उसके हाथ में हथियार था, लेकिन आस्तिक इस समय निहत्था खड़ा था। देव के आदमियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा था। देव ने धीरे से अपना हथियार नीचे किया और अपने कदम आस्तिक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत है तुम में, मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी पर गन पॉइंट करने की हिम्मत, वो भी तब जब मेरी बेटी उसके गोद में थी। मीरा अरुणिमा को लेकर घर वापस आ गई थी। बच्चे इस समय देव की बहन के साथ कमरे में थे और मीरा बच्चों को देखने के लिए गई थी, तो वहीं कमरे में बैठी अरुणिमा बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया जो वो कुछ कर नहीं सकी। फिर दरवाजा खुलता है और मीरा अंदर आती है। जैसे ही मीरा अंदर आती है, अरुणिमा तुरंत उसके पास जाते हुए कहती है, मीरा हमें वहां से नहीं आना चाहिए था, देव आस्तिक को जरूर नुकसान पहुंचा देगा, उसे रोकना होगा। आस्तिक ने कुछ नहीं किया, वो बस मुझे यहां से ले जाना चाहता था, उसका इरादा तुम में से किसी को भी चोट पहुंचाने का नहीं था। मीरा ने उसके कंधे को पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, मुझे पता है अरुणिमा की वो बस यहाँ पर तुम्हें लेने आया था। उसका इरादा सही था लेकिन तरीका गलत। अगर तुम्हारे पति को तुम्हें अपने साथ ले जाना था तो इसके लिए तुम्हारी मंजूरी होनी जरूरी थी। अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती हो तो वो तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं ले जा सकता है। और जहां तक बात है देव के गुस्से की, तो वो पूरी तरह से जायज है। वो अपने परिवार और बेटी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। ऐसे कोई भी उसके घर में घुसकर उसकी बीवी के ऊपर हथियार तानकर उसके बीवी बच्चों को डरा देगा तो फिर क्या वो खाक अपने माफिया काटिल की हिफाजत करेगा? उसकी बात सुनकर अरुणिमा पूरी तरह से चौंक जाती है और वो हैरानी से मीरा को देखने लगती है। मीरा ने उसे ऐसे देखा तो जल्दी से उसे संभालते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं देव की बीवी हूँ और इसीलिए अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा पति किस काम में किस तरीके से शामिल है।
तुम्हें याद है जब तुम देव को छोड़कर गई थी तो तुमने उसे अलग होने की वजह क्या बताई थी? तुमने कहा था देव की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें वो लाइफस्टाइल दे सके जिस पर तुम रहती हो। उसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, दौलत नहीं है, इसीलिए तो उससे अलग हो रही हो। तुम तो ये बोलकर उसकी जिंदगी से चली गई लेकिन उसने तुम्हारे शब्दों को अपनी जिंदगी जीने का जरिया बना लिया। देव इतना बेवकूफ नहीं था जो ये ना समझ पाए कि दिन रात की मेहनत से सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाई जा सकती है, करोड़ों की दौलत नहीं। दौलत कमाने के लिए पावर चाहिए और इस पावर के लिए देव ने रशियन माफिया ज्वाइन किया था। देखते ही देखते उसके पास अपनी कंपनी आ गई और रशियन माफिया का एक बहुत बड़ा पावर उसके हाथ में था। आज वो इंडिया में बैठकर रशिया के बड़े बड़े ड्रग डीलर्स और हथियारों के स्मगलर्स के साथ डील करता है। यहाँ उसका बिजनेस और उसकी पोजीशन सबको नजर आती है लेकिन इसके पीछे देव का रशियन माफिया के साथ काम करना है। मुझे देव और उसके काम के बारे में पहले दिन से पता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन शायद वो उस वक्त बहुत दूर निकल चुका था। पर हालात उस दिन बिगड़ गए जब मैं हमारे दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल से घर वापस आ रही थी। तब दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया था। देव अकेला उन लोगों से लड़ा था। तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर उस वक्त देव हमारे साथ नहीं होते तो शायद मैं और बच्चे सही सलामत नहीं होते। और उस दिन मैंने देव से एक वादा लिया कि उसके इस गलत काम का असर कभी भी मुझ पर या बच्चों पर नहीं पड़ेगा। अगर उसके काम की परछाई बच्चों के ऊपर आती है तो मैं इस वक्त उसे छोड़कर चली जाऊंगी। देव जानता था कि उसके लिए ये सब करना आसान नहीं है लेकिन वो मुझे और बच्चों को इन सब से दूर रखता था। ये हमारा घर जो हमने शहर से बाहर बनाया है। यहाँ पर तुम्हें कोई बॉडीगार्ड नज़र नहीं आएगा, ना कोई सिक्योरिटी नज़र आएगी, क्योंकि मैं और बच्चे यहाँ पर एक साफ़ और सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता है और ना ही हमारे बारे में कोई जानता है। देव ने आज तक बच्चों के सामने ना तो कभी हथियार उठाया है और ना ही अपने काम का कोई जिक्र किया है। वो अपने बच्चों के लिए एक आदर्श पिता है। पर आज तुम्हारे पति ने जो किया वो बहुत गलत था। ये पहली बार था जब शौर्य और अरुणिमा ने असली हथियार को देखा था और तुम समझ सकती हो उस वक्त बच्चे कितना डर गए थे। तुम्हें लगता है कि उस वक्त देव ने जो किया वो गलत था, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए?